अपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेण के शरीर से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं, उसका उल्लेख भगवत गीता में चतुर्थ अध्याय के अष्टम श्लोक में मिलता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म का फिर से स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान विष्णु अपने दो हाथों में असुरों को मारने के लिए गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब भगवान का यह अवतार इस धरती पर या ब्रह्मांड में होता है तो वे असुरों का वध करके भक्तों की रक्षा करते हैं। वे कभी कभी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन रूपों का वर्णन मिलता है। वे भगवान बुद्ध के रूप में अपने भक्तावेश अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 27 अवतार जीवात्मा के निहित भगवान विष्णु की शक्ति के अवतार है। जीवात्माएं भी भगवान विष्णु के अंश हैं, किंतु वे अपने शक्तिमान नहीं होते। अतः जब कोई जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है तो वो भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त क्या होता है। जब राजा पृथ्वी को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया जाता है तो उन्हें 27 अवतार मानना चाहिए। भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा भक्ति संप्रदाय का उपदेश देने के लिए होते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु के समान ही कर्म करके तर्क द्वारा असुर हो हराता है और शास्त्रानुमोदित भक्ति संप्रदाय का उपदेश देता है। जैसा कि भगवत गीता में संकेत किया गया है, अब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि वो विष्णु अथवा श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त कर चुका है। चैतन्य चरितामृत में अंत्य 7:11 पुष्टि की गई है कि कृष्ण शक्ति बिना नहे तार परि प्रवर्तन। जब तक किसी को ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो, वो भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा पुरुष की आलोचना करता है तो दोष निकलता है तो उसे विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वो दंडनीय भी है। भले ही ऐसा लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव बन ले, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकते। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने थोड़ी सी विस्तृत विवरण किया और विगत श्लोक में भी कुछ बातों की चर्चा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग में प्रस्तुति की। तो पहली बात है, राजा का कर्तव्य है प्रजाओं को अपनी पुत्र हिसाब से पालन करना, पुत्रवत। राजा शासक है, जब शासक होकर वो भक्षक बने तो फिर धर्म किसके ऊपर आधारित हो सकता है। जब प्रतिनिधि, राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के आदेश अनुसार और ब्राह्मण के आदेश के अनुसार क्षत्रिय को चाहिए वो राज्यों का परिचालन करे। ये शास्त्रों का निर्देश है, आदेश है। और जो व्यक्ति शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है उसी का नाम तो अभक्त है। भक्त भगवान और भक्ति, ये तीनों एक लाइन पर है। भगवान है तो भक्त है, और भक्त है तो भक्ति भी है। ये तीनों को हम एक दूसरे से अलग कर दें तो नहीं चल सकता। भगवान जो आदेश देते हैं, भक्त उसी कथा को सभी के सामने बांट देता है, अपने मन से कुछ नहीं करता। जैसे कि एक पोस्ट पियन, उसका कर्तव्य है हम जो पत्र लिखते हैं उस पत्र को लिख करके वो यथानुरूप से जिसी का नाम और एड्रेस है वहां पर पहुंचा दे, वो बीच में अपनी मनमानी ना करे। उसी प्रकार भक्त वो है जो अपने पारंपरिक आदेश अनुसार गुरुवृंद है उनकी चरणाश्रित हो करके जो ज्ञान को आहरण करता है वो जन समुदाय में उसी प्रकार से वितरण करे, अपनी मनमानी ना करते हुए। जब कोई व्यक्ति मनमानी बीच में करता है फिर क्या होता है? योग नष्ट परम तप। हे पृथा पुत्र अर्जुन, वो पारंपरिक जो योग चली आ रही थी क्रमानुसार वो नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, क्योंकि व्यक्ति मनमानी किया, महाअपराध है। इसलिए शास्त्रों को हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी काल से किसी भी पात्र से। हाँ, जो 27 अवतार हैं भगवान के आदेश, भगवान के शक्ति को लेकर के अवतरित होते हैं, कुछ कुछ बातें वो परिवर्तन ले आ सकते हैं, बिकॉज दे आर अथॉरिटीज। अथॉरिटीज कर सकता है। जैसे कि सूर्य की रश्मि अगर गंदगी में गिर जाए वो गंदगी को निकाल करके पवित्र बना देता है। अगर सूर्य की रश्मि नहीं होता तो समस्त चीज दुर्गंध में नहीं भरता, वो कड़क धूप से उसको खींच लेता है और उसको पवित्र बना के छोड़ देता है, गंध रहित कर देता है, क्योंकि उसमें शक्ति है, समर्थ है। पर जो समर्थ नहीं है उसे थोड़ी सी विद्या प्राप्त हो जाए कभी भी ऐश्वर्य कृपा से, जाके बोलते स्वल्प विद्या भयंकरी ही, बहुत उत्पात मचाता है। और दूसरी शब्द में कहा गया गंडूष मात्रेण जलेन सफरी फरफरायते, थोड़ी सी जल के अंदर छोटी सी मीन वा मछली बहुत तड़पता है, दुनिया को दिखाता है देखो मैं कितना बड़ा हूं, किंतु गंभीर जल में जो बड़ी मछली है वो कभी ऐसे फड़फड़ाते नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त हो जाए हम बड़े बड़े बात को सोच बैठे, कभी गलती हो सकता है, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। राजा मृत्यु को अगर इस प्रकार की ज्ञान होता जे राजा का कर्तव्य क्या है तो प्रजा वर्ग को इतना दुखी नहीं करता, धरती माता को इतना दुखी नहीं देता। धरती माता के ऊपर हम सभी जन्म लिए हैं, इसलिए भक्त लोग देखो जब भी हम आसन डाल करके धरती माँ के ऊपर बैठते हैं ये धर्म के कार्य में आता है, क्योंकि आज धर्म की चर्चा है, कुछ बातें और भी आगे भी आएगी। तो हम वसुधा माता के नमन करते पहले, पैर रखने से पहले उसकी विधि के अनुसार हम उनको प्रणाम करते हैं, फिर हम उसके ऊपर बैठते हैं। वासुदेव प्रीति के लिए हे माता हम आपकी अर्चना करते हैं और पैर रखते हैं, आप मेरा अपराध क्षमा करना कह करके हम बैठते हैं। ये हमारी संस्कृति है दूसरे को सम्मान देना, पर राजा भी धर्म परायण राजा होना चाहिए, अधर्म नहीं। साधारण रूप से हम धर्म की व्याख्या ऐसे समझते हैं धारयते इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। मुसलमान भाई से पूछो तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म कुरान में यही लिखा है, ये हमारा धर्म है। हिंदू भाई लोगों से पूछो वो भी कहेंगे हमारा धर्म शास्त्रों में इसे लिखा है। परंतु वैष्णव जो है वो सभी धर्मों से परे है, वो केवल एक ही धर्म से विश्वास करते हैं और बिलंग करते हैं, वो है सनातन धर्म। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, बा रामायण, बा महाभारत में किसी भी जगह पर हिंदू धर्म की वर्णना नहीं है। हिंदू ये शब्द कहीं उल्लेख नहीं है, और जहां जहां भी उल्लेख है सनातन है, सनातन धर्म, जिसका कभी आद्य भी नहीं है और उसकी अंत भी नहीं है, उसका जन्म नहीं है, उसका मृत्यु नहीं है, वो सनातन अंशी है। इसी भाव में जब भक्त आ जाए, इस प्रिंसिपल में जब भक्त आ जाए, फिर वो क्या करता है, खं वायु अग्निम सलिलम महिम च सत्वानि दृशा निदृशद्रुमादिन सरेत समुद्रंश्च हरे शरीरम यत्किंचि भूतम् प्रणमेद्यनन्यः। वो भक्त पानी, झरने, पेड़, वृक्ष, नदी, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि को भगवान के शक्ति समझ करके प्रणाम करता है। फिर यहां अनर्थ आया कैसे? तुम ये धर्म से बिलंग करते हो, मैं इस धर्म से बिलंग करते हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की जितने फिलोसफी है, श्रील प्रभुपाद जी के आज जितने मंदिर है, ये मंदिर शास्त्रों के अनुसार प्रामाणिक है, बेशक इसको व्यक्ति स्वीकार करे या स्वीकार ना करे, डज नॉट मैटर। आउल पेचा, यदि 12 बजे दिन को वो ये डिक्लेयर करे आज सूरज उगा ही नहीं है, क्या ये सत्य है? सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो आंखों से अंधा है। दिन में उसको दिखाई नहीं देती, सूर्य उगे हैं, 12 बजा है दिन में, कड़क धूप है, पर वो दिख नहीं सकता। ये शब्द का अर्थ नहीं है जिस सूरज का जो उदय नहीं हुआ। इसलिए जो भक्त है वो शास्त्र से प्रमाण लेकर के कोई चर्चा करता है, और जब भक्त और एक भक्त से चर्चा करे उसका तो केवल रस निकलता है, ब्रह्म रस। रसस्वादन जब दोनों भक्त एक दूसरे से मिले, भगवत गीता इसका प्रमाण है। मत चित्त मदगत प्राणा बोधयन्ति परस्परम मत कथा वाचकम नित्यम तृष्यन्ति च रमन्ति च तृष्यन्ति च रमन्ति च। पर कब ये स्थिति हो सकता है? ना जब भक्त इसी भाव में आए, सर्वत्र हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सभी हृदय में भगवान विराजमान है, और उससे आगे बढ़े, जब भक्त और उससे आगे बढ़ता है फिर क्या देखता है? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणो गविहस्तिनी स्वान चैव शुपाके च पंडिता सम दर्शिनः। ये भगवत गीता का श्लोक है, चाणक्य पंडित के श्लोक है। चाणक्य बड़े प्रकांड ब्राह्मण थे, पंडित विद्वान थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। पंडित वही है जो आत्मवत अपने जैसा सर्वभूतेषु सभी को देखता है। मुझे अगर एक थप्पड़ कोई मारे कितना लगता है, जो वो अनुभव करता है वो दूसरे को थप्पड़ मारे तो उसे समझ में आता है कितना दुख हो सकता है। शास्त्रों ने एक बात और भी कहा, अबोध व्यक्ति के लिए जिसको स्वल्प ज्ञान, लिटिल नॉलेज, इट्स डेंजरस, विद्वान ही जानाती विद्वार जन परिश्रमम नहीं बंध्या बिजानाती गुरुवी प्रसव वेदनाम। जिसने विद्या को आयत्त किया, गुरुगृह में जाकर के इन संस्कृत श्लोकों को, वेदों को पाठ किया, पढ़ा, वो समझ सकता है। एक श्लोक को अध्ययन करके उसको मेमोराइज करो, हाउ मच एफर्ट्स इज देयर, कितना कठिन होता है, वो समझ सकता है। जो माता ने बच्चा का जन्म नहीं दिया वो प्रसव की वेदना को कैसे समझ सकती है? नहीं समझ सकता। इसलिए अनुभवी होना बहुत जरूरी है। मंदिर के जो अथॉरिटी वर्ग है उनको क्यों उस जगह पर बैठाया गया है? क्योंकि 20 साल 25 साल 30 साल मंदिर के अंदर भी बहुत कठिनाइयां हैं। ये मत सोचो जे कोई व्यक्ति टेस्ट दिए बिना पहुंच जाता है, बहुत कष्टों का समाधान करना पड़ता है। तभी जब कुछ अनुभवी होता है व्यक्ति, तभी जा करके उस पद पर उसे बैठाया जाता है। क्योंकि 30 साल 25 साल कोई साधारण समय नहीं है। नित्य प्रति मंगल आरती उठना, 16 मालाओं को जप करना, इंद्रियों को संयम में रखना कठिन है। तपस्या, ये तपस्या बहुत कठिन है। पर इन तपस्याओं से जब कोई व्यक्ति थोड़ा आगे निकलता है फिर उसे आनंद भी आता है। क्योंकि भगवत नाम, भगवान कृष्ण की जो नाम है वो रसराज है, वो स्वयं रसप्लुत है, चारों तरफ से रस है। परंतु जब हृदय पवित्र हो, जब हृदय बिल्कुल पवित्र हो, निर्मल हृदय हो, और भगवान की पवित्र नाम जुहा पर आए, फिर जिह्वा में चीनी डालने की जरूरत नहीं है, जिह्वा ऑटोमेटिक रस से भर जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, श्रीमद् भागवत को भागवतकार जब ये श्लोकों को लिखते थे, आपको लगता था कोई वो गांजा चिली में वगैरह पिए हुए थे, उनका ब्रेन काम नहीं करता था? ना, वो दूरदर्शी है, वो देखते थे कल आएगा क्या क्या होगा। धर्म संकोचित, धर्मपरायण व्यक्ति संकोच में है आज। धर्मपरायण व्यक्ति संकोच में, धर्म संकोचित तपी विरहित क्षौणी मंद फला नृपस्य कुटिला ब्राह्मण ब्रह्म त्यागी कुल त्रिभ्रष्टा। ये कलिजुग की लक्षण है। तो राजा हो करके धर्मपरायण नहीं थे, राजा के कर्तव्य उन्हें पता नहीं था, तभी दूसरों को कष्ट देता था। शास्त्रों में एक श्लोक वर्णन है, जो दुष्ट प्रकृति व्यक्ति हैं उनकी भी लक्षण है, और जो साधु प्रकृति के व्यक्ति हैं उनकी भी कुछ लक्षण शास्त्रों ने दिया। ये हुआ विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। साधुस्य विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, जो विद्या वो आहरण करता है, कुछ सीखता है, उसको वो विवाद में व्यतीत करता है। किसी के घर में झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा सृष्टि करता है। क्षमा चाहता हूं, अगर कोई यहां पर हमारे लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, ये पर्टिकुलर आप लोगों के लिए नहीं है, ये एक जनसामाजिक शास्त्रों का एक निर्देश है, और ऋषि महर्षियों की ये स्तोत्र है, इसलिए मैं इसको सामने लेके आता हूँ। विद्या विवादाय धनंगमदाय दजरज द लॉ प्रैक्टिशनर द लॉयर वकील लोग क्या करते हैं, आपके केस को साइन करते हैं, जो घटना घटी है मैं तुम्हारा केस हूँ कोर्ट में लड़ूंगा, परंतु वो लड़ते क्या है, आपको भी ये ट्रेंड करते हैं कैसे बोलना। अगर असत्य बात हो वो असत्य बात को सत्य में बदलने के लिए जो टेक्निक है वो सब लॉ पढ़े रखे हैं कैसे बदल देना। विवाद तो हो गया ना, किसी के घर में झगड़ा नहीं, नहीं तुम ये कर दो फिर हम समझ लेंगे, परंतु इतना रुपया मैं लूंगा, वही उनका प्रोफेशन है, पर वो प्रोफेशन अच्छा नहीं है। हाँ कोई सत्य के लिए लड़े तो ठीक है, पर असत्य को सत्य में बदलने के लिए, इवन इन द जज कभी रॉन्ग जजमेंट दे देता है, अनुचित व्यक्ति को दंड नहीं मिलकर के जो सत्य व्यक्ति है वो भी दंड पा लेता है, ऐसा भी कभी कभी हम देखते हैं। विद्या विवादाय जो दुर्जन खड़ प्रकृति के व्यक्ति है उसका लक्षण हुआ, जो ज्ञान उसके पास है वो ज्ञान को दूसरों की झगड़ा में व्यतीत करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, जब धन आने लगे, धन में शुद्ध लक्ष्मी जो है वो नारायण की दासी है, जैसे कि एक उदाहरण है जो हम देवता और देवियों से प्रीवियस श्लोक में इसके कनेक्शन है, प्रभुपाद जी प्रोपर्ट में लिखते हैं, जैसे कि माता काली है, माता काली वो आज अगर कलकत्ता स्टेट में जाओ बंगाल में आप देखो कालीघाट, कालीघाट एक प्रसिद्ध स्थान है कलकत्ता का, और उस काली देवी को हनुमान जी ने पातालपुरी से महिरावण से पाताल लोक से उनको लेकर के जहाँ पर राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने वाला था महिरावण, तो वहां से लेकर के उन्होंने उनको स्थापना किया था। पर आज जो हमारे दुखी माता वर्ग हैं जिनके सास और ससुर लोग उनको सताते हैं वो माँ के पास पहुंच जाता है, इनोसेंट भाव है, शास्त्रों को समझी नहीं है, ना कोई उनको समझाया है, वो जा करके बोलती है हे माँ आज अगर मेरा सास ससुर ये कष्ट मुझे ना दे, मेरा पति इतना कष्ट ना दे और मैं तुझे 21-11 बकरी चढ़ाऊंगी, ये स्तुति कर बैठती है। और कभी कभी सौभाग्य में किसी को पुत्र नहीं है क्योंकि घर में बड़ा चर्चा होता है, आज भी भारतवर्ष में इस बातों की अनभिज्ञता है, एक साधारण बात है, स्त्री के गर्भ में पुत्र होना ये स्त्री के अधिकार में नहीं है, आयुर्वेदिक आयुर्वेद चरक संहिता इसका प्रमाण देता है, किंतु घर वाले सोचते हैं ये बहु ही खराब है। कैसे पुत्र में भी कमी हो सकता है क्योंकि पुत्र दान पुरुष के अधिकार में स्त्री का नहीं, किंतु गांव के लोग है अनभिज्ञ है शास्त्रों से, जब कुछ बातें ऐसी होता है रो पड़ती है और माँ के पास जाकर बोलती है माँ 10 बकरी चढ़ा दूंगी मेरे गर्भ में एक पुत्र होना चाहिए, और सौभाग्य में 3 साल के बाद अगर पुत्र हो गया तो वो आनंद में भर जाती है और 12-15 बकरी 21 बकरी लेकर के माँ के सामने काट देती है। आप लोगों ने कभी देखा है जब बकरी कटती है माँ के सामने, दुर्गा पूजा की जो सप्तमी और अष्टमी की संधि से स्थिति में बलि चढ़ता है, भैंस बलि भी चढ़ता है किस जगह पर, आज भी भारतवर्ष में, परंतु ये धर्म कार्य नहीं है केवल पापमय कार्य है, और प्रभुपाद जी ने बड़े क्लियर शब्द में लिखा है जो माता काली जो है उमा कात्यायनी गौरी काली हईम बती सौरा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृढ़ानी चंडिकाम्बिका सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये वैष्णवी माँ है, भगवान शिव के पत्नी गृहिणी। जो भगवान शिव जब भोजन करते हैं वो पंखा दोहराती है, भगवान शिव जब भोजन कर लेते हैं अवशेष भोजन को वो महा महा प्रसाद समझ करके पाती है। वो वैष्णवी अपनी संतान की खून कैसे पी सकती है? ये धर्म के अपमान है, अधर्म का काम है। पर हजार लोग जब वो निरीह बकरी को खींचते हैं वो चिल्लाता है, जब मैं बांधना नहीं चाहता हूं, चाहती हूं। तो अर्गली, अर्गली ऐसा होता है, दो लकड़ी और बकरी को लेकर के उसकी जो गर्दन है इसमें डाल दिया जाता है और एक कांटा इसमें चढ़ा दिया जाता है। वो आगे भी नहीं जा सकती और पीछे भी नहीं आ सकता बकरी। और एक सत्र में क्रिंग स्विंग क्रिंग इत्यादि मंत्र का उच्चारण होता है और एक हमारे मुसलमान भाई लोग उसको नीचे से काटते हैं, उसको हलाल मीट कहा जाता है। और हमारा सो कॉल हिंदू भाई वाले उसको ऊपर से काटते हैं क्योंकि हिंदू मीट हो गया। और वो क्या बोलते हैं, ये मायर प्रसाद, मां का प्रसाद समझ करके सब खाते हैं। वैष्णव पुराणों में उल्लेख है, मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। क्लियर स्टेटमेंट, नहीं कर सकता। इसलिए धर्मपरायण राजा जब आसन पर आता है पहले उसकी तो शुद्धि होना चाहिए, पहले है खाद्य शुद्धि, आसन शुद्धि। जिस स्थान पर बैठो वो शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धि से बहुत बहुत कारण हो सकता है। आसन शुद्धि, उससे पर बैठो, उसके बाद भोजन की शुद्धि। सभी भोजन मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य के लिए भोजन की बहुत व्यवस्था है। कोई व्यक्ति ये आर्गुमेंट ले आ सकता है, हम क्यों नहीं आ सकते, आज के साइंस भी बड़े बड़े तर्क वितर्क में आ गया है। वो आप लोग तो बोलते हो वो वेजिटेरियन से भी कैंसर होता है, अमक है, ये है, दूध दूध जो है गाय के दूध है तो उसमें भी ये है वो है, तो हम बहु प्रकार की चर्चा, पर हम उन चर्चा से आनंद नहीं लेते। जो चर्चा हमारे ऋषि महर्षियों ने निष्कर्ष किया है, रिसर्च, ये जो शब्द आया ये हमारे शास्त्रों से आया है, ऋषि, ऋषि से रिसर्च बना। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो स्तोत्रों को लिखा है उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करना चाहते, हम अपनी मनमानी नहीं करना चाहते। खाद्य की शुद्धि जीव जगत के लिए है, जो जो भोजन के अनुकूल है मानव के लिए, वो ठाकुर जी के सामने नैवेद्य धरा है। हम साधारण रूप से कहते भोग लगाना, पर भोग से अच्छा शब्द है शास्त्रों में नैवेद्य। नैवेद्य शब्द का अर्थ है निवेदयते इति नैवेद्य, जो बड़े भक्ति पूर्वक ठाकुर जी के सामने ले आया जाता है, अहम पूर्वक नहीं। यहां भी कुछ चर्चा है अहम में, राजा दुर्योधन और विदुर के चरित्र में महाभारत में आता है, पर उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ी सी श्लोक के ऊपर टिके रहेंगे। तो जो कुछ भी हम खाते हैं, पर शास्त्रों में वर्णन है, जो जो भोजन नैवेद्य के रूप में ठाकुर जी के सामने ना धराया जाए तब स्वान विष्टा समहा, वो स्वान के टट्टिके, कुत्ता का टट्टिके समान है वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करना। इसलिए निवेदयते, निवेदन पूर्वक भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति प्रभुत मस्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति पूर्वक यदि कोई जल फूल पत्ता चढ़ाता है तो मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूं। ठाकुर जी ने इस बात को नहीं कहा ये खाना वो खाना वो खाना, खाद्य की आवश्यक नहीं है। अगर व्यक्ति खाना भी चाहे फिर भी एक जनसमाज के रूप में शास्त्र के ढंग से इसको विचार में लिया है, विचार में लीजिए, 84 लाख योनियों में मानव जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, पशु के पास नहीं है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार ये जो मनुष्य है वो किस कैटेगरी में आता है? देखो, बाघ देखो, भालू देखो, सांप को देखो, मेढक को देखो, बिल्ली को देखो, जो मांसाहारी प्राणी है वो जीव को निकाल करके पानी पिएगा। ये एक लक्षण शास्त्रों ने घोषित किया, जीव को निकाल करके। कुत्ता को देखो जब वो पानी पीता है जीव को निकाल करके। पर जो वेजिटेरियन प्राणी है वो दोनों लीफ्स को लगा करके, ऊंटों को लगा करके पानी शोषण करेगा। ये माध्यम में आए तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हो? प्रकृति की बात को देखो, आप लोग दोनों जीव करते हो, जीव निकाल के पानी पीते हो? भक्त लोग जीव निकालते गए नहीं, तो फिर क्या हुआ? प्रकृति ने आपको किस कैटेगरी में डाल दिया? इसमें चर्चा नहीं, चर्चा करना ही नहीं, इस क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? पर मैं ये नहीं कहता हूं केवल वेजिटेरियन ही पर्याप्त है, मैं आऊंगा, मंकी भी वेजिटेरियन है। पर शास्त्रों ने उस श्रीमद् भागवत तो उसको ऐसे ही निंदा किया है, वेजिटेरियन होना भी काफी नहीं है। पर प्रकृति के अनुसार मानव किस कैटेगरी में, मैं उसका प्रमाण देना चाहता हूं। दूसरा प्रमाण जो दांत है पशुओं के, देखो चार दांत बहुत लंबे होते हैं और टेढ़े होते हैं। सांप को देखो, सिंह को देखो, शेर को देखो, बिल्ली को देखो, क्योंकि वो कच्चा मांस को छीन के खाता है और उसकी जो हाथ और पैर की जो नख है वो बड़े शार्प होते हैं पकड़ने के लिए। वो झांप मार के पकड़ ले पशु हिल नहीं सकता, रुकना पड़ेगा, फिर वो गला को पकड़ के शेर उसको लटका देता है। हाँ, और शेर में एक गुण की अवगुण है, शेर में, शेर जंगल की राजा है। पर कहावत है शेर अपनी पत्नी को बहुत खटाता है, शेर शिकार ज्यादा नहीं करता, वो शेरनी करती है शिकार, शिकार करके लेने के बाद शेर खाता है। जहां पर शेरनी की तकलीफ है फिर शेर जाकर पकड़ता है, वो कभी कभी हंटिंग में जाता है, सब हमेशा नहीं जाता, उसकी पत्नी उसके लिए काम करता है। ये है दो प्रमाण, बड़े बड़े दांत। पर हम लोग मानव है, हमारे पास दो दांत थोड़े बड़े हैं, परंतु वो जैसे तो नहीं है, तो फिर हम किस कैटेगरी में आए? तीसरा प्रमाण, अगर मांस खाना ही है भाई लो, आप कच्चा खाओ, पकड़ो हिरण को खाओ, बकरी को खाओ, देखें ना, हम वो नहीं करते, उसको वध करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, फिर मसाला इत्यादि देके टेस्टी होना चाहिए, वो मेथड से फिर हम भोजन करते हैं, राइट? पर शास्त्रों में विधान है, जो व्यक्ति उसे मारता है, जो व्यक्ति उसको क्रय विक्रय करता है, जो व्यक्ति उसको पकाता है, जो व्यक्ति उसको आदेश देता है और भोजन करता है, ये सभी को सभी व्यक्ति इक्वल पनिशमेंट। और शास्त्र में वर्णन है एक टुकड़े मांस जो भक्षण करता है उस वो जीव जीवात्मा की जितनी लोम है शरीर में इतना बार उसको मां का स्तन पी के ये संसार में जन्म लेना पड़ता है। एक जन्म को देखो कितना कठिन है, तो इतना जन्म क्यों लेना चाहते हो? हाँ, क्यों लेना चाहते हो? हाँ, उन दिनों में जो ब्राह्मण वर्ग थे जब वो बलि प्रथा में बलि चढ़ाते थे, शास्त्र में वर्णन है बूढ़ा जब बूढ़ी हो जाए उसको वो पशुवध में लेकर के, कभी ऐसा प्रमाण भी आता है। परंतु देखो यहां पर दो बात मैं लेके आना चाहूंगा, वो ब्राह्मण कितने तेजस्वी थे, जब ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करके उसको हत्या करते थे, उसको निम्न जुनी से उठा करके उच्च जुनी में डाल देते थे, उनके पास वो शक्ति था। आज कोई भी ब्राह्मण आके ये डिक्लेयर करे जो मैं कर सकता हूं, हाँ, गर्गाचार्य की कथा तो आप लोग सुने होंगे, गर्गाचार्य जी कौन थे? वसुदेव जी के भी प्रीस्ट, वसुदेव की तरफ से, और कृष्ण और बलराम जी की जो नामकरण संस्कार किया, उनकी प्रियतमा पत्नी, उनके साथ कभी कभी पति पत्नी में कभी उच्च स्वर में वार्तालाप हो जाता था, तो गर्गाचार्य जी मन मन में ये सोचते थे जे मेरी अवध पत्नी को समझाऊं कैसे, जे मैं उसका एक सुशील पति हूं, एक दिन की बात ऐसे हुआ, सो रहे थे गर्गाचार्य जी और सवेरे सवेरे प्रातः समय में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जग करके बोलते गार्गी, गार्गी बोले प्रभु क्या हुआ, आप आज इतने व्यथित क्यों है, इतना अस्थिर लग रहे हैं, क्या बात है। बोले देखो आज थोड़ा थोड़ा मेरा शरीर थोड़ा टूटा टूटा लग रहा है, मैं और सुना चाहता हूँ। बोले अगर ऐसी बात है सो जाइए। बोले ना मैं ऐसे नहीं सुना चाहता हूँ। बोले फिर कैसे सुना चाहते हो। बोले तुम्हारी गोदी में सर रख करके सुना चाहता हूँ। तो गार्गी बोली ये मेरे पतिदेव का जो हो क्या गया, अब वो भी सोना चाहते हैं और मेरे जो घर के कार्य है वो भी बंद करना चाहते हैं। पर कोई बात नहीं, पतिदेव इतने दिन के बाद एक हृदय की बात कही है तो उसे पूरा करती हूँ। बोले ठीक है। तो गार्गाचार्य जी अपनी गोदी में पत्नी के गोद में सर रख करके सो गए और ऐसा सोए वो, नींद टूटे तो टूटे नहीं, और ये आदेश दे करके सोए गार्गी को, गार्गी जब मैं अपने से उठूं तो मैं उठूंगा किंतु मुझे जगाना नहीं। गार्गी ने ये बात को सुना और गार्गाचार्य जी सो गए। सोते सोते ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया, सूर्य भगवान उदय हो गए। शास्त्रों का ये विधान है, क्यों हम मंगल आरती में उठ के स्नान करते हैं, स्नान के भी महिमा शास्त्रों ने दिया है। प्रभात समय में सूर्य उदय से ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान है वो ऋषि स्नान है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंधारा हो वो ऋषि लोक स्नान है, और थोड़ी सी सूर्य भगवान उदय से पहले जो स्नान है वो देव स्नान है, और सूर्य उदय के बाद जो स्नान है शास्त्रों ने उसको राक्षस स्नान कहा है, वो पवित्र स्नान नहीं, राक्षसों का स्नान है सूर्य उदय के बाद। इसलिए आज गार्गाचार्य जी ब्रह्म गायत्री जपना, प्रभात गायत्री खत्म हो गया क्योंकि सो रहे हैं। गार्गी को बहुत तकलीफ हो रहा है, बोले क्या होगा फिर, क्योंकि ब्राह्मण गायत्री उसकी एक शक्ति है, ब्राह्मण का गायत्री जप एक शक्ति है, इसलिए हम तीन टाइम गायत्री जपते हैं। गुरु महाराज जब हमें ब्राह्मण इनिशिएशन देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा, फिर गायत्री मंत्र भी प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र शास्त्रों की विधि के अनुसार दक्षिण कान को खींच करके कान को कान के अंदर से फूंक देना चाहिए, उच्चारण कराना चाहिए, और गायत्री मंत्र जप करने वाले व्यक्ति को बहुत शक्ति मिलता है आध्यात्मिक के रूप में। आज प्रभात गायत्री नहीं जपे, वो 12 बजे 12 भी बज गया फिर भी गार्गाचार्य जी सो रहे हैं, तो मध्यान्ह गायत्री भी चला गया, अब संध्या होने जा रही है। तो गार्गी को तो बड़ा कष्ट हुआ, आज हो क्या गया पतिदेव को, वो सो रहे हैं। तो उन्होंने शास्त्र पर उनकी वृद्धांगुष्ठी को पकड़ करके हिलाया, बोले जगो जगो जाग जाओ। देखो गार्गाचार्य जी जगे और बहुत क्रोध से बोले गार्गी तुम्हें मैं मना किया था मुझे जगाने के लिए, क्यों जगाया। गार्गाचार्य जी गार्गी बोली प्रभु आपको हो क्या गया है, आप प्रातः गायत्री नहीं जपे, मध्यान्ह गायत्री नहीं जपे, अभी सूर्य भगवान अस्ताचल में जा रहे हैं, संध्या हो जाएगी, उपनित हो जाएगा, संध्या गायत्री नहीं जपोगे तो आप ब्राह्मण कुल से नहीं रह सकते, आपकी जो पावर है वो चला जाएगा, फिर मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ, ब्राह्मणी मैं कैसे रह सकती हूँ। गार्गाचार्य जी बोले ओ ऐसी बात है, तो रुको गार्गी, सूर्य भगवान थोड़ा ठहरो, सूर्य की गति रुक गई, स्नान किए, प्रात गायत्री जपे, मध्यान्ह गायत्री जपे, संध्या गायत्री जपे, बोले भगवान सूर्य अब आप अस्ताचल में जाओ, सूर्य फिर चलने लगे। कौन ब्राह्मण ऐसे हो सकता है जो सूर्य की गति रुकने में समर्थ है, कोई आज। इसलिए कलौ शूद्र संभवा, कलिजुग के प्राणी बड़े गिरे हुए हैं। प्रायेण भागवत प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलाहावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंदभाग्या शुपद्वितः। कलह प्रिय है प्राणी, इसलिए क्षत्रियो को चाहिए ब्राह्मण के आदेश के अनुसार राज्य का पालन करे। जब ब्राह्मण लोगों ने देखा जे भेड़ जो है वो बहुत सताता है, तो सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए और उसे तैल भंड में डाल करके चरवण करने लगे। उससे पृथ्वी महाराज की जन्म हुआ। और भगवान कहते हैं पृथ्वी को देख करके, पृथ्वी को देख करके जे आप ये दुख के समय पर आप अवतीर्ण हुए। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता से ये श्लोक कोट किया, चतुर्थ अध्याय का श्लोक है जे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म का फिर से स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। उड़ीसा जगन्नाथपुरी क्षेत्र से विरामचंद्रपुर शासन से मेरे परंपरागत जो पूर्वज है आए हैं, मैं उनसे एक हूँ। मेरे छोटे भाइयों का व्रत उपनयन संस्कार था। ब्राह्मण लोगों का 10 कर्म में एक कर्म उपनयन संस्कार है जो यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। तो उस कार्य के लिए मैं पहुंचा और मेरे दोनों छोटे भाइयों की कुछ बच्चे थे जो उपनयन संस्कार में आए हुए थे। तो वहां पर जितने भी ब्राह्मण वर्ग थे, सब डिग्रीधारी ब्राह्मण थे। कोई संस्कृत के PhD जिसको बोलते हैं, संस्कृत के आचार्य है, कोई व्याकरण आचार्य है, तो कोई साहित्य आचार्य है, ऐसे ही डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति, और कर्मकांड के भी कुछ आचार्य थे। सभी 8 व्यक्ति इन्वॉल्व थे उस कार्य में। तो मैंने उन लोगों से निवेदन किया जे जब जब एक आहुति होगी तो उसमें हम तुलसी काष्ठ को एक हम अग्नि के ऊपर आहुति देंगे, क्योंकि मुझे ये पता था भगवान कृष्ण जो है अग्नि की मुखारविंद से ही वो भोजन करते हैं। तो जब हम इतने बड़े कार्य करते हैं तो तुलसी की काष्ठ से अगर घी घी घृताहुति दिया जाए तो और 100 गुना उसका फल निकल आएगा। तुलसी काष्ठ की बहुत महिमा है। अगर ऐसे वर्णन है, एक तुलसी काष्ठ अगर मृत शरीर के अंदर हजारों कांठों के काष्ठ के बीच आ गया हो तो सभी काष्ठ को पवित्र करके उस सब को भी वो वैकुंठ भेज देता है, ऐसा प्रमाण है। तो मैंने उन ब्राह्मण वर्गों से निवेदन किए जो एक एक काष्ठ के ऊपर आहुति दिया जाए। कुछ ब्राह्मणों ने मुझे वो कह दिया जो तुलसी काष्ठ से होम नहीं होता। उन्होंने 2-4 श्लोक पढ़े, बड़े उनकी तर्क भीतर श्लोक से था जो तुलसी काष्ठ से अग्नि नहीं होता। तो मैंने कहा प्रमाण क्यों नहीं होगा, समिध काष्ठ से लेते हो आप, अमर का मैंगो काष्ठ से आप यज्ञ करते हो, तो तुलसी काष्ठ से यज्ञ क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे इधर उधर से समझाया, किंतु मैं समझा नहीं। मैंने कहा अगर आप लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो होता बने, जो पुजारी आहुति देता है, मैं उनकी होता उसको कहते आचार्य उसको कहते हैं। तो मैंने कहा आचार्य के रूप में मैं स्वयं को वरण करता हूं, आप लोग मेरे असिस्टेंट बन जाओ। पर ये बात उनको लगा क्योंकि मैं चढ़ाऊंगा, अभी घर मेरा है, मैं चढ़ाऊंगा। तो फिर मैंने कहा मैंने भगवान शिव जो जो व्याख्या दिया मैंने उसको स्तुति के रूप में उनको सुनाया। उसके बाद मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा, मैं ये जानना चाहता हूं भगवान शिव से कौन ब्राह्मण बड़ा है यहां, वो चुप रहे। मैंने कहा जब भगवान शिव इस बात को कहते हैं देन हु आर यू टू गिव दिस स्टेटमेंट। फिर उन्होंने क्या कहा जे वो लोग का घर है, हमको बुलाए हैं, तो हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, जो वो बोलते हैं उसको हमको मान लेना चाहिए। फिर सभी लोगों ने मान के वही कार्य किया। पर शास्त्र में प्रमाण है तुलसी की काष्ठ से यदि वो नैवेद्य को बनाया जाए, जो फल नैवेद्य को नैवेद्य आप लगाते हो उसकी 1000 गुण फल प्राप्त होता है और पितृपुरुष उद्धार हो जाते हैं। वो नैवेद्य को भगवान को भोग लगाकर जब पितृपुरुष को पिंड चढ़ाते हो, इसलिए धर्मपरायण राजा होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है प्रजाओं को पुत्रवत देखे। जब पुत्रवत नहीं होता तो फिर भगवान, यहां पर भगवत गीता भगवान कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान ही विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सह उच्यते। शरीर राजा का हो, जिसे श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में कली राजकीय परिच्छेद को राजा जैसे परिवेश को लिया है और प्रहार करता है वृषभ रूपधारी धर्म को, पर तो वो छद्मवेश है ना, ढोंगपन है ना, तो ठाकुर जी वही कहते हैं मिथ्याचार। वो व्यक्ति मिथ्याचारी है जो वास्तविकता नहीं है, अवास्तविक के रूप को लेकर के दुनिया के सामने प्रकट हो करके सभी के मन में कन्फ्यूजन सृष्टि करता है। वो व्यक्ति को शास्त्र और श्रील प्रभुपाद कभी समर्थ नहीं किया। शिरो मुंडितम, ये माधवाचार्य जी के श्लोक है। माधवाचार्य शिरो मुंडितम तुंड मुंडितम, शिरो मुंडितम तुंड मुंडितम चित्तं न मुंडितम तत् किं मुंडितम। हे भक्त मेरे, हमने मस्तक उत्सर्ग किया गुरु की शरण में, जब आकर के अग्नि को साक्षी रख करके जो सबसे बड़ा कीमती प्रिय वस्तु हमने ठाकुर जी के चरण में सौंप दिया। ठाकुर जी सबसे जो प्रिय है वो आपका है। वैष्णव की जो तिलक है, वामो पार्श्वे बसेद ब्रह्मा दक्षिणेस्तु सदा शिवा मध्ये विष्णु तिष्ठन्ति। वैष्णव के तिलक के वाम भाग में ब्रह्मा जी का, दक्षिण भाग में भगवान सदाशिव का और मध्य में भगवान विष्णु का निवास है। इसलिए तिलक को दर्शन करने मात्र से ही पाप जल करके बस में भूत होता है। तिलकधारी व्यक्ति बड़े बड़े महान होते हैं। तिलक धारण किया हुआ व्यक्ति को यमराज स्पर्श नहीं कर सकता। तुलसी कंठ माला धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज स्पर्श नहीं कर सकते। बोले क्यों ना? ये जो बात मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं, ये हमारे स्कॉन की, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की किसी जगह पर उल्लेख नहीं है, बट एक पुस्तक गौड़ीय संप्रदाय के कुछ एक महाराज से जो उन्होंने किया था, मैं उसका अध्ययन किया था। एक बार की कथा ऐसी हुई, जो एक बड़ा पापी था जो धर्मपरायण बिल्कुल नहीं था। मृत्यु के समय पर यमराज उसे लेकर के जमजातना देने के लिए जा रहे थे, तो उसे लघु शंका आया और वो जमदूतों से ये कहा जे बाबू मुझे थोड़े क्षण के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे लघु शंका आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लघु शंका कर ले, फिर हम खींचते हैं तुझे। तो वो लघु शंका की जगह देखे कि तुलसी माता का पेड़ उगा हुआ है, तो उसी के ऊपर जाके उसने लघु शंका कर दी। आप देखने जो गांव इत्यादि में जो पशु वर्ग है, जैसे कुत्ता है, वो तुलसी के पेड़ में हिरोनी करता है। तो जब कर दिया तो इन्होंने कहा चलो और अच्छा हुआ, जो इसने किया इसकी सजा और बढ़ गई, तो हम उसको और सजा देंगे। परंतु आए बगैर जिसके ऊपर उसने लघु शंका की, उस वृक्ष को पकड़ करके सो गया, वहां से निकला नहीं। और विष्णु ये जमदूत ने सोचने लगे, बोलते ये तो बड़ा पापी है, बड़ा तुलसी पेड़ को पकड़ करके सो गया है, अगर जब उसको खींचे तो तुलसी की पेड़ भी उखड़ता है, और तुलसी की पेड़ उखड़े तो बोलते अरे अरे ये तो नहीं हो सकता, तो क्या करें। इन ये जमदूतों में ये बात हुई, तो एक जमदूत बोला तुम इसको पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, मैं जाता हूँ हमारे मास्टर को पूछ के आता हूँ क्या करना चाहिए। सब जमदूत पहुंचे जा करके यमराज के पास, और यमराज ने कहा क्या बात है। बोले प्रभु स्वामी ने ऐसे गलती हुई, रास्ता में उसे पीट पीट के ले रहे थे, बोले लघु शंका आया, जाकर के तुलसी के ऊपर उसने लघु शंका कर दी और तुलसी के पेड़ को पकड़ के सुहा, छोड़ता नहीं, और हम खींचते तो तुलसी उखड़ जाएगा, इसी डर से आपके पास आए, क्या करना चाहिए उसको। बोले तुलसी के शरण में जो चला गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए पापी की, ये बात तो आज तक ऐसी विचार मेरे पास नहीं आया था, तो इसका समाधान मैं नहीं कर सकता, चलते भगवान शिव के पास, उनका क्या कहना है। तो सभी मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव भगवान बोले ऐसी बात मेरे सामने पहली बार है, मैं भी नहीं कर सकता। तो फिर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, भगवान ब्रह्मा बोले ये भी पहली बार मैं सुन रहा हूं ऐसी बात, पर ये बात पर तुलसी तो भगवान की दासी है, तुलसी तो भगवान की गोविंद प्रिय सी है, तो भगवान विष्णु के पास चलते, उनका क्या कहना है। वो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास जब गए, भगवान विष्णु बोले गोविंद वल्लवांग देवी भक्त चैतन्य कारिणी स्नापयामी जगद्धात्री विष्णु भक्ति प्रदायिनी। वो तुलसी देवी के शरण में जो चला गया है और उसका फिर दंड कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु बोले भक्त की महिमा, इसका दंड नहीं हो सकता, इसलिए तो वैष्णव को नित्य प्रति तुलसी सेवन, तुलसी के हम पानी जल देते हैं, तुलसी वृक्ष की मिट्टी को मस्तक में धारण करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या की दोष भी निकल जाता है, परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करते हैं। किंतु अधर्म परायण जो राजा हो वा ब्राह्मण हो, इसलिए चित्तंग न मुंडितंग तत् किंग मुंडितम। जब तक हृदय की सफाई कैसे होता है, गिरिराज स्वामी थे, जब मैं पहली बार आया तो मैं यज्ञ पवित्र धारण किया हुआ था, तो वो मुझे 6 महीना के लिए, उस दिनों में ऐसे नियम था जो नए भक्त हमारी है वो 6 महीना सब बाथरूम सफाई करेगा। मैं तो जगन्नाथपुरी से था, यज्ञ पवित्र में हम जब यूरिन इत्यादि करने जाते हैं कान की दक्षिण कान में लगा करके जाते हैं, और अभी बाथरूम सपना सफाई करना पड़ेगा, वो चंडाल का काम है, तो मैं, मुझे तो बड़ा तकलीफ हुआ, तो मैं बहुत बहुत रोया। उस समय जो न्यू भक्त के डायरेक्टर थे वो बोले नहीं नहीं तुमको करना पड़ेगा, वो ब्राह्मण प्रमाण इधर नहीं चलता तो करना पड़ेगा। मैं बोला करो क्या, मैं बहुत रोया, मैं कहा इतना पैसा मेरे पिताजी ने दिया, जा जगह पर भी तो दिया, इतना पैसा खर्चा किया, अभी चंडाल बनूंगा, नहीं हो सकता ये, तो क्या करूं। तो रो रो के मैं गोपाल कृष्ण महाराज के पास गया। उस समय गोपाल कृष्ण महाराज गृहस्थ आश्रम में थे और 100 श्रीधर महाराज के ऑफिस के इस बाजू में रहा करते थे, तो मैं बहुत रहा, क्योंकि वो केवल हिंदी वही बोलते थे, हिंदी क्लास देते थे, और तमाल कृष्ण महाराज भी और गिरिराज स्वामी ये सब तो सब इंग्लिश में बात करते थे, तो उस समय मैं बहुत नया था, 77 की बात है ये, 1977 की, 7 की 78 ऐसा होगा। तो मैं जाके महाराज को बोला, मां मैं बहुत रोता था, तो मैं महाराज को भी एक दो बार मसाज दिया था उस समय, तो महाराज थोड़े मुझे जानते थे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, तो मैंने उनको बोला जे महाराज जी, बोले तुम क्यों रोते हो, क्या हुआ क्या हुआ, तो तुरंत दाढ़ी काट रहे थे उस समय, मैंने दरवाजे क्या, और मैं बहुत रो रहा था, बोले क्या हुआ, मैं कहा मेरा पूरा यज्ञ पवित्र को वो तोड़ना चाहते हैं, मैं क्या करूं प्रभु जी, मैं कहां जाऊं। तो बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दुखी मत हो, तो मंदिर छोड़ के मत जाना, मंदिर छोड़ के मत जाना, प्रभुपाद जी का मंदिर है, देखो ना कितने लोग रहते हैं, सभी के विचार थोड़ा थोड़ा अलग है, ये नहीं है, किंतु एक काम करो, मैं कुछ करता हूँ, किंतु तुम बाद में मिलो, अभी मैं दाढ़ी काटता हूँ। तो मुझे थोड़ी सी अच्छा लगा, मैं जो रो रहा था, थोड़ा महाराज जी ने पीठ पर हाथ लगाया तो थोड़ा और जोर रो पड़ा, किंतु मुझे थोड़ा शांति हो गया। तो फिर मैं गया प्रसाद उसाद लेके, फिर महाराज जी को प्रभु ये गोपाल कृष्ण महाराज जी को मिलने आया, तो गोपाल कृष्ण महाराज जी ने मुझे फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक वेदव्यास प्रभु बोल के भक्त थे, इसे कुछ उनसे परिचित हुआ, वो मुझे तमाल कृष्ण महाराज जी के पास ले गए, तो तमाल कृष्ण महाराज जी ने मुझे अमोघ लीला और इनसे निकाल करके ये मंदिर भेज दिए, राधा राजभारी के पास बोले तुम तुलसी चलना और तिलक घिसना और बर्तन धोना जो ठाकुर जी का। मैंने कहा ठाकुर जी ने बड़ा कृपा किया, मैं राधा राजभारी के सामने प्रणाम कर दिया, मैंने कहा कम से कम जम जातना जैसे निकल आया, सवेरे उठना पानी डाल देना, नहीं उठे ऐसा। पर आज उन बातों को महाराज जी की कही हुई बातों को सह करके सुन करके हे बोल के, तो आज देखो कितना आनंद है। और भगवद गीता में भी इसी बात का स्पष्टीकरण है, जो कार्य शुरू से बड़ा आनंददायक हो और उसकी अंत दुखदायी हो वो रजगुणाश्रित कर्म है। उसका उदाहरण गृहस्थ जीवन को भगवद गीता ने दिया। प्रभुपाद जी कहते गृहस्थ जीवन देखो शुरू में कितना आनंद है, हाय डार्लिंग विदाउट यू आई कांट लिव इवन वन सेकेंड, ठीक है, पर अंत में फिर कोर्ट आता है, कचहरी आता है, दो बच्चे होते हैं, फिर पारिवारिक समस्या होता है, धन अर्थ की कमी हो जाता है, किंतु शुरू में आनंद, अंत में देखो कितना उल्टा पलटा हो जाता है। जो कार्य शुरू से बड़ा कठिन हो अंत बड़ा मधुर हो, वो कार्य सत्वगुण के ऊपर आधारित है। भक्ति जीवन देखो शुरू बहुत कठिन है, कौन इसे करता रहेगा, माला जपो मन नहीं लगता, सोलह माला बोलता है, वो प्रभु जी मुझे क्यों बार बार ऐसे बोलता है, वो करता है क्या, नहीं करता, मैं क्यों करूं, हरे कृष्ण 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 हरे, फिर भी मन ना लगे, कष्ट होता है ना, मन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है नहीं लगना। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। ये मन तो सबसे बड़ा चंचल है, कभी अभी इधर है तो कभी हजार माइल दूर पर है, एक पल में बानर जैसे छलांग मार देता है। ठाकुर जी अर्जुन पूछता है, षष्ठ अध्याय का श्लोक है, हे ठाकुर जी ये मन को कैसे रुका जाए, ये मन वायु से भी तेज भागता है, तीव्र गति से, वायु को रुकना संभव है मन को नहीं। भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं, भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन को, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो बात ठाकुर जी ने कहा, अभ्यास और वैराग्य विद्या को प्रैक्टिस, वैरागी वैराग्य भाव को लेकर के अभ्यास में रत रहना, माया का निवास छह चीज में प्रभावशाली है, माया छह बातों में, हमें भक्त वर्गों को थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं कोबरा सो रहा हो, जरूरत क्या है उसको जगाना छेड़ना, आवश्यक है, बुद्धिमान बनो ना। तालाब में स्नान करते हो, हवा आता है, कीचड़ आ गया है, डूब जाओ, वो निकल जाएगा, फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। संसार से लड़ोगे कब तक लड़ोगे, जीवन बीत जाएगा, संसार खत्म नहीं होगा, जीवन बीतने के बाद भी ये चीजों की समाप्ति है नहीं, क्योंकि इसी का नाम है संसार, ठगने के लिए ये संसार बनाया, प्रहेलिका कंफ्यूजन, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग हियर। पर बुद्धिमान, यदा संहरते चायम कुरुमांगानी इव सर्वसः, कछुआ का उदाहरण ठाकुर जी ने दिया है, समेट लेता है अपने इंद्रियों को और जब कोई नहीं होता आगे बढ़ता है, ऐसे विवेकी बनो और धर्म की पूरा पूरा पालन करो। हाँ, एक व्यक्ति ये भी कह सकता है, हम धर्म की पालन पहले क्यों करें, धर्म हमारे साथ पहले क्यों नहीं देता, ना धर्म नहीं देगा पहले साथ, धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म को तुम पहले पालन करो फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। उदाहरण है, मैच बॉक्स में आग है क्या, पर मैच बॉक्स को प्रयोग पहले कौन करता है, हम करते क्यों, अपने होता है प्रयोग पहले, घिसता कौन है, हम, तभी लाइट प्रकट होती है, फिर आग जला देता है सबको। ऐसे ही धर्म की पालन तुम पहले करो फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी, रक्षति रक्षता, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए अधर्म के ऊपर नहीं जाना, कभी कभी मनुष्य फॉल्स इंप्रेशन में दूसरे को गुमराह करता है, वो हमें नहीं करना चाहिए, उचित से मृत्यु भी सामने आ जाए, धर्म को नहीं त्याग देना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ सभी जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी भी जुड़ी हुई है, सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो छोड़ के भी आपको गए हैं वो भी आएंगे। ये शास्त्रों का आदेश है। इसलिए हमें गुरु की आश्रय में रह करके, भक्तों का संग करके, भक्त संग में बहुत आज देखो, अगर मैं एक ब्राह्मण पुत्र था, बहुत मंत्र जानता हूं, विवाह इत्यादि जानता हूं, तो बाहर जाता तो पेट को रोटी नहीं मिलता, इसी बात नहीं है। किंतु प्रभुपाद जी के भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता। अगर उस दिन वो गुरु महाराज ने जो थोड़ी सी, देखो वो तो इतने बड़े बिजनेस मैनेजमेंट के डायरेक्टर रहे, मेरे से, मैं एक छोटा भक्त था मंदिर का, एकदम आप लोग जैसे, आज आया था, दो महीना से भी नहीं हुआ था, किंतु उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा समय बिताया, एंड प्रभुपाद शुड ब्लेस हिम। थोड़ा सा जो समय है वो मेरे जीवन को ये मंदिर में रख लिया। मंदिर को छोड़ के कहां जा, मृत्यु है बाहर जाने के लिए, मंदिर को छोड़ के जा नहीं सकता कोई। जो एक बार प्रभुपाद जी की मंदिर का प्रसाद पाया, वो बाहर एडजस्ट नहीं हो सकता, चाहे मंदिर कितना भी कष्ट दे, नहीं हो सकता। ये मेरा अनुभव है 30 साल से, और आप लोग का भी अनुभव होगा कुछ। इसलिए कितना भी कष्ट आए, अथॉरिटी के चरण पकड़ के सो जाना, प्रभु मुझे नहीं त्याग दो, आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा। अगर आप लोग को लागे भी अथॉरिटी गलत है, उसकी देखकर करने के लिए राधा रासबेरी बैठे, आप लो अपने हाथ में मत लो। देखो एक उदाहरण की स्वरूप, महाभारत में दो श्लोक द्रौपदी के आया, कोई भक्त गा सकता है वो दो श्लोक क्या था, जो आर्त चित्कार करती हुई द्रौपदी ने पुकारी भगवान कृष्ण को, जब वो विपदाग्रस्त में, संकटग्रस्त में थी। हे नाथ हे रमानाथ क्वासी जादव नंदन, कौरवारण मम भग्नम मंग उद्धरस्य जनार्दन। ये श्लोक पढ़ने से पहले द्रौपदी अपनी बाहु में चेष्टा कर रही थी जे मेरे लज्जा का निवारण हो जाएगा, मतलब मैं बच जाऊंगी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सत्यभामा के साथ पासा खेल रहे थे, और जब भक्त को ये विपत्ति आया, भगवान के मुखारविंद एकदम विषाद में छा गया। सत्यभामा पूछी, हे नाथों का नाथ, आपको क्या हो गया, इतने हरस बदन में आप क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, विषाद क्यों आ गया मुंह में। ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त आज कष्ट में सत्यभामा, मेरा भक्त कष्ट में। बोले कौन, ना द्रौपदी, ना क्या हुआ। बोले आज भरी सभा में वो नग्न होने जा रही है। बोले प्रभु आप उसकी रक्षा करो। बोले मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं, क्योंकि जो अपनी बाहुबल में ताकत को रखा है वो यही सोचती है कि वो बचने में समर्थ है, वहां पर मेरा रास्ता नहीं है। किंतु जब द्रौपदी अपनी आंखों को बंद कर ले, दोनों हाथों को ऊपर उठा दे, उत्तोलित बाहु उठा करके ये बोले, हे कृष्णा हे कृष्णा द्वारका वासिन, गोपी कृष्ण जनप्रिय, कौरवये परिभ्रोतांगमं किंग न जानासि केशव। हे केशव, क्या आप नहीं जानते हो ये कौरव के बीच में आ गया हूं, कौरव रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूं। तब भगवान वस्त्र रूप धारण किए। इसलिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण रूप समर्पित होने का अर्थ है, अगर ऐसा लागे भी हम कष्ट में है, उस कष्ट को घूट घूट करके पियो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जब कलकत्ता में गए, उन्होंने देखा सीट में भक्त लोग कष्ट में थे, उनको 4 बजे उठेंगे पर वो ऐसे ही से सो रहे थे। उन्होंने टेंपल प्रेसिडेंट को बुलाया और डांटा। उन्होंने कहा ये भक्त अपने पिता माता भाई बंधु को छोड़ करके मंदिर में आया है, तुम प्रेसिडेंट हो, ये शीत में क्यों सड़ रहा है? ये पिता का एक कर्तव्य है, प्रेम दोनों तरफ से होता है। ऐसे ही जब श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर ये प्रेम में अपूर्त हो जाए, संसार की कोई शक्ति आज हमारे मंदिर को नहीं भेषक, कोई निंदा करे स्तुति करे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण ऐसा है ऐसा है, अरे ये केवल कहने के लिए है पर सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। जो दौड़ता है वही गिरता है, जो बैठा है वो गिरेगा कैसे? हम किसी की स्तुति और निंदा नहीं करता, चारों धाम की यात्रा किया, हजारों देशों की जाके प्रचार किया देखा, किंतु जो प्रचार आज अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ कर रहा है और करने में समर्थ है, कोई प्रचार में इतना नहीं है, नीति में हो सकता है, बोलने में केवल हो सकता है, वो केवल जीव की बात है, कर्ता कौन है? आज जो चलता है, बद्रीनाथ की यात्रा करो, केदारनाथ की यात्रा करो, कठिन यात्राएं हैं और यात्रा में ही कभी गिर पड़ता है व्यक्ति, घोड़े के साथ भी जाता है क्योंकि रास्ता ऐसी है। साधारण रास्ता में चलने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं गिरेगा, भक्त के जीवन में चलने वाला रास्ता बहुत कठिन है। समस्त इंद्रियों को पूर्ण रूपेण भगवत सेवा में लगाना ये बच्चा खेल नहीं है। पर कोई चले ही नहीं, प्रचार करे ही नहीं, दुख पाए ही नहीं और बोले ये हरे कृष्ण मंदिर खराब है, वी डोंट केयर। मैंने फिर वही वही कहा, निंदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गतत्तु यथेच्छम अद्वैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायत पथ प्रवी चलंती न थिराहा। जो धीर पुरुष एक बार भगवान के शरण में आ चुका है, गुरु से समर्पित हो चुका है, सनातन धर्म को अंगीकार किया हुआ है, शास्त्रों को अध्ययन किया है, ज्ञान को दृढ़ रूप में आहरण कर लिया है, वो व्यक्ति की स्तुति सारा संसार करे या उस व्यक्ति की निंदा सारा संसार करे, वो व्यक्ति आज भी धनवान बन जाए या गरीबी बन जाए, वो व्यक्ति का मृत्यु आज हो जाए या कल्प के युग में हो जाए, उसके लिए वो वृक्षेप नहीं करता, वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो ये जान चुका है यही रास्ता ही गोविंद की रास्ता है, ये मुझे मिला देगा। फिर हम गिरे क्यों? ठीक है, हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, पर प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के शरण में तो है, फिर भी विपद टलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भागवत की वाणी ही गलत है। रहु राजा की चरित्र में जब रहु राजा को यह प्रश्न पूछा गया, रहु राजा ने यह प्रश्न पूछा जड़भरत जी से, ये भक्ति प्राप्त कैसे हो सकता है? तो जड़भरत महाराज क्या उत्तर? पहली बार मुख खुला, और पहली बार मुख खुलते हुए जड़भरत जी क्या कहते हैं? भक्तिम, जड़भरत जी कहते हैं बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना महत्पाद, महत्पाद दो व्यक्ति का है, भगवान गोविंद की पैर की महिमा महत्पाद है, और गोविंद की चरण में जो लगा हुआ अन्यथा शरणंग मम। हे गुरुदेव, और किसी की शरण में हमें आवश्यकता नहीं है, और किसी की शरण में जाना मुझे स्वीकार भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आप उचित हो। फिर चिंता किस बात की, संशय किस बात की? इसलिए अदृढ़म च हतं ज्ञानम, ज्ञान को दृढ़ता से स्वीकार करना, केवल कान से सुना निकालता नहीं चलेगा, ना 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 ना। अदृढ़म च हतं ज्ञानम, ज्ञान को एकदम कड़क से धारण करो और आदेश के अनुसार आगे बढ़ो, हरिनाम के संकीर्तन करो। देखो कितना मीठापन अपने आप खिलने लगेगा, ठाकुर जी कराएंगे। आप लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हो, कितना आजकल हमारे संस्था ने कितने पेपर बनाए हैं, उसके एग्जाम देना पड़ता है ब्राह्मण बनने के लिए, राइट? ब्राह्मण दीक्षा लो तो कुछ एग्जाम पास करना पड़ेगा आपको। ये तो एक साधारण बात है, पर अगर भवबंधन से मुक्ति किसको मिले वो साधारण बात है। केवल बाल काटने से, तिलक धारण करने से, कंठीमाला धारण करने से हो जाएगा, लगता है इसे आपको? ना, उसके लिए थोड़ी सी कठिन तपस्या की जरूरत है। वो तपस्या जब निकट आ जाए अपने आप विकार टूटने लगेंगे। हाँ, इसलिए नित्य प्रति भागवत की सेवन, तुलसी की सेवा, वैष्णव के चैतन्य महाप्रभु ने तीन बात बड़े सुंदर ढंग से भक्तों के लिए कहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ, जीवे दया ना में रुचि, वैष्णव सेवन एते अधिक धर्म नहीं सुनो सनातन। हे सनातन गोस्वामी सुनो, ध्यान से सुनो, भले जीव मात्र में दया, जीवे दया और नामे रुचि, भगवत नाम में रुचि और जीव मात्र में कल्याण, दया नामे रुचि जीवे दया, वैष्णव सेवन और वैष्णव की सेवा, ये तीन से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म है ही नहीं संसार में, इसमें सब शास्त्र भरा है। इसलिए भक्त लोग, आप सभी को जय जयकार हो, श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर में रह करके आप संसार के, संसार को उद्धार करने वाले एक एक सैनिक हो। आप में ताकत नहीं होगा फिर कोई आपको डिफीट कर सकता है ना, तो ताकत कहां से आता है? हरि नाम की संकीर्तन से, हरि नाम की जप, जप में हृदय पवित्र होता है। इसलिए हरि नाम की जप नित्य प्रति प्रयास करो, इसमें फोर्स की आवश्यक नहीं, आपको समझना चाहिए। हाँ, प्रत्येक सोसाइटी की कुछ कुछ अलग अलग नीति नियम थोड़ा बहुत है, पर मेन बात तय की है, सवेरे उठना, ठाकुर जी की सेवा करना और प्रातः समय में जागना, ये किसी भी धर्म में आता है। सवेरे 4 बजे माइक लगा के बोल देते हैं, पर भारतवर्ष की दुर्भाग्य है, संविधान में हमारे 2 लॉ है, एक के लिए कुछ और, एक के लिए कुछ और। हम कुछ करें बहुत ऑब्जेक्शन है, दूसरा कुछ करे ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो रिलीजन नॉट सपोज टू बी पॉलिटिकल मोटिवेटेड, दैट्स वाई श्री प्रभुपाद की जो पुस्तक है वो बड़े स्पष्ट बाद में कहा है, इसलिए बड़े डाइजेशन करने के लिए दूसरों के लिए बड़ा तकलीफ होता है। दैट इज द थिंग, बहुत कड़वी दवाई है, कड़वी दवाई जो है ना जीभ को खुड़ापन में भर देता है, कौन पाएगा? नो, इफ यू ड्रिंक इट मे डायबिटीज विल गो अवे। हरे कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो, आप सभी की जय जयकार हो। हरि हरि बोल। ये ठाकुर जी का, हरिबोल प्रभु। नो 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 प्रभु जी, हमारे छोटे प्रभु की जय जयकार बहुत।